आज हम आगे बढ़ना चाहते हैं लूका उसके पहले अध्याय में। पिछली बार हम 25 पद तक थे, अब 26 पद से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन 26 पद से लेकर के 80 पद तक बहुत लंबा खंड है, बहुत लंबा भाग है, और हम एक ही साथ सारे भाग को नहीं देखते। इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहली बात है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी है, जो मरियम के द्वारा, मरियम के पास संदेश आता है, उसकी तैयारी है और किस प्रकार से परमेश्वर मरियम को तैयार करता है। और उसके बाद जो मरियम की ये इलिशिबा संबंधी है, रिश्ते में है, उसके पास हो जाती, किस प्रकार से प्रभु इनको पूरी से निश्चितता प्रदान करता है, मरियम किस प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद करती है, उसकी स्तुति करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होता है, और उसके बाद दूसरे भाग में न केवल उसका जन्म होता है लेकिन किस प्रकार से यूहन्ना का पिता जकर्याह और इलीशिबा जो उसकी माँ है किस प्रकार से परमेश्वर की बड़ाई करते हैं और परमेश्वर की योजना में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। सो दो मुख्य चीजें हैं, एक मरियम से परमेश्वर का स्वर्गदूत बात करता है और यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा, और तब उसके बाद इलीशिबा के पास जाती है, इलीशिबा किस प्रकार से उसके साथ आनंद मनाती है, और तब उसके बाद किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा वाले का जन्म होता है और उसके लिए उसके माता पिता आनंद मनाते हैं। ये इन पदों में, इन सारी चीजों में पाया जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा खंड को विभाजित कर दें तो हम पांच मुख्य बातों को इसके आगे देखते हैं। पहली बात, यीशु के जन्म की घोषणा 26 से 38 पद तक है। दूसरी बात, मरियम का इलीशिबा के पास जाना और वार्तालाप करना 39 पद से लेकर 45 पद तक है। फिर मरियम की आराधना या उपासना, परियम किस प्रकार से परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होती है, आनंद मनाती है आशीषित होने के कारण, आराधना जो 46 पद से लेकर 56 पद तक है। तब उसके बाद यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाले का जन्म है जो 57 पद से लेकर 57 से 66 पद तक है, और तब उसके बाद जकर्याह द्वारा भविष्यवाणी की एवं उसकी आराधना जो 67 से 80 तक है। सो ये पांच मुख्य खंड है जो आगे हम इस पूरे अध्याय में देखते हैं। तो अगर पूरी रीति से देखा जाए तो इसमें लगभग 7 मुख्य खंड पाए जाते हैं एक पूरे अध्याय में जो 80 पद में हैं। और अगर अच्छा होता कि 7 इतवार इस बात पर वर्णन कर अध्ययन किया जाता जो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी, पर मैं जो मेरा ध्यान खास उसे ये है कि हम एकदम से 25 तारीख को जन्म का संदेश ना सुने, लेकिन जन्म से पहले हम उन बातों को भी जान सके कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए तैयारी कर रहा है और किस प्रकार से उस सारे कार्य कर रहा है, और तब हम जान सके कि हाँ, यीशु मसीह का जन्म ऐसे ही नहीं हो गया। जो आप शायद कुछ ही समय से आराधना कलीसिया में आ रहे हैं या इतना अधिक बाइबल को आप नहीं जानते या प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में आपने ज्यादा नहीं जाना, तो शायद ये अच्छा होगा कि हम समझ सकें, अरे प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसे हुआ था। केवल 25 तारीख को उसका जन्म हो गया ही नहीं, वास्तविक से 25 तारीख यीशु के जन्म का दिन नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, यह सच्ची बात है। ऐतिहासिक रीति से लोगों के द्वारा बाद में चल करके इसको बताया गया है, उसका एक इतिहास है, उसका एक इतिहास है, लेकिन दिन अलग होता है, दो चार दिन का फर्क होता है, सीजन वही है, समय वही है और परिस्थितियां वही दिखाई दे रही हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह, ऐतिहासिक सत्य है, तथ्य है, सच्चाई है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, यीशु इस संसार में मनुष्य बनकर आया है, यह सबसे बड़ी श्रेष्ठ बात है। सो आज जो हम विचार करना चाहेंगे, हम 26 पद से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे कि किस प्रकार से यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। सबसे पहली बात, यीशु के जन्म की जब भविष्यवाणी होती है तो लिखा हुआ छठे महीने में। अब यूहन्ना के जन्म और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के में 6 महीने का गैप है, 6 महीने, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था, 6 महीने बड़ा था, उससे पहले वो आकर आया और उसने उस भूमि, उस जमीन को, उस स्थान को तैयार किया है। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्दूत नासत नामक गलील के नगर में आया, एक कुंवारी के पास भेजा गया, स्वर्दूत को आदेश मिला परमेश्वर की ओर से, तू जा और जाके वहां पर एक कुंवारी स्त्री रहती है जिसका नाम मरियम है, उसके पास जा और उसको जाकर के ये संदेश दे। क्यों? एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी जो दाऊद के वंश था, और उस कुंवारी का नाम मरियम था, और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री सलाम, प्रभु तेरे साथ है। इस कथन को सुनकर वो अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई कि किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद किसका सिंहासन उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज करेगा और उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं, कुंवारी ही हूं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा। आच्छादित मतलब घेर लेगा, तुझे पूरी ओर से कवर कर लेगा होगा। इस कारण वो पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरे कुटुंबी इलिशाबा से भी एक बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है और उसका जो बांझ कहलाती है छठा महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। सो ये पहले कुछ पद हैं जहां पर हम स्वर्गदूत की और उसके साथ साथ मरियम की वार्तालाप देखते हैं। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, मरियम को मरियम ने कभी इस बात की अपेक्षा नहीं की थी। जरूर मरियम की मंगनी होगी थी और उस समय मैंने बार बार कई बार बताया होगा, मंगनी के बाद ये व्यवस्था थी, वहां का नियम था, तरीका था, कुछ बातें थी। पहली बात, मंगनी के बाद पुरुष को जिसके साथ कन्या की स्त्री की मंगनी होती थी उस पुरुष को जाकर के उस अपने विवाह के बाद रहने के लिए घर को तैयार करना पड़ता था। और जब वो सब कुछ तैयार होता था और लगभग एक वर्ष का समय होता था जहां की उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, एक वर्ष का समय होता था जहां की उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। और तब उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता था तब वो विवाह होता था। अब जब हम इस बात को देखते हैं तो हम ये संदेश एक आश्चर्यचकित करने वाला संदेश है, अद्भुत संदेश है, आश्चर्यचकित करने वाला। ये संदेश मरियम को चिंता में डाल देने वाला संदेश है। मरियम चिंतित हो गई, मरियम घबरा गई, और न केवल, लेकिन ये संदेश एक अद्भुत संदेश है जो मनुष्य की सोच और मनुष्य के समझ से बाहर है। क्यों? एक कन्या, एक स्त्री जिसकी मंगनी हुई है, जो अभी पुरुष के साथ उसका कोई संबंध नहीं हुआ है, उसका विवाह नहीं हुआ है, ये कैसे संदेश है? और जब ये बात आती है तो लिखा हुआ है उसके सामने, लिखा हुआ है कि जब वो उसके पास भेजा गया कि उसकी जिसकी कमरी हुई थी 28 पद, तब बीता का हे प्रभु की कृपा पात्री। क्या हुआ? परमेश्वर ने इस स्त्री पर अपनी दृष्टि की और परमेश्वर इसके नाम के आगे संबोधित कर रहा है, हे प्रभु की कृपा पात्री, अर्थात प्रभु ने तुझ पर कृपा की है। मरियम, तेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। मरियम ठीक मेरे और आपके समान, मनुष्य के समान, वो आने जातियों के समान, वो सच में पापी स्त्री थी, वो पापनी थी। परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद में साफ लिखा है, रोमियो 5 अध्याय 12 पद में ये लिखा है। अर्थात मरियम भी मेरे और आपके समान सब वो पापी थी, स्त्री थी। मरियम को मेरे और आपके अनुसार छुटकारे और उद्धार की आवश्यकता थी। जब हम उसके स्तुति गान को देखते हैं 47 पद में तो क्या कहती है वो, और मेरी आत्मा उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है। उद्धारकर्ता परमेश्वर, वो एक उद्धारकर्ता की वो भी प्रतीक्षा करती है। सच है मरियम परमेश्वर का भय मानती थी, मरियम परमेश्वर का सम्मान करती थी, इलिशिबा भी परमेश्वर का भय मानती थी, और मैंने इलिशिबा और मरियम ये परमेश्वर के ये आपस में एक संबंधित थे, ये लोग परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर पर विश्वास करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनका स्थान मनुष्य के स्थान से कहीं अलग या कहीं बढ़कर हो। मरियम की मेरे और आपके समान शारीरिक मृत्यु हुई, ये सच है। जब प्रभु यीशु मसीह जब तक जिंदा थे क्रूस पर गए, मरियम भी उस स्थान पर क्रूस पर जाती है और उसके बाद हम उस क्रूस की अंतिम वाणी को देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने यौना से कहा देख तेरी माता यह है और देख तेरा पुत्र यह है और मरियम उसको और यौना मरियम को लेके चला जाता है। उसके बाद हम मरियम के इतिहास के बारे में आगे देखते नहीं शांत पाते हैं, परंतु उसके मरने का वर्णन अगर नहीं है तो उसके जी उठने का भी वर्णन नहीं है। वो भी मेरे और आपके समान आज भी उस पुनरुत्थान की प्रत्यक्षा कर रही है, जैसे जो लोग पहले सो गए और जो आने वाले में सोएंगे, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और मुर्दे जिलाए जाएंगे तो मरियम भी उसी समान जिलाए जाएगी। मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूं, विशेषकर वे लोग जो रोमन कैथोलिक पृष्ठभूमि से हैं, क्षमा कीजिएगा मैं बड़ी नम्रता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमें समझना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए, मरियम मध्यस्थ नहीं है। मरियम के माध्यम से हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंचते हैं, मरियम के माध्यम से हम हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। मरियम को परमेश्वर ने एक मुख्य किसी ना किसी स्त्री को उसको चुनना था, किसी ना क्यों चुनना था, क्यों नारी को चुनना था, क्योंकि उसने जब मनुष्य ने पाप किया था तो उसी समय परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा बांध दी थी, ये वाचा कर दी थी जो बार बार हम स्मरण करते हैं और जो उत्पत्ति उसके तीसरे अध्याय में हम इस बात को पाते हैं जो 15 पद में है, और मैं तेरे वंश से इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस स्त्री के वंश के वंश जो है पुरुष से चलता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर की वाचा थी स्त्री के वंश से। परमेश्वर ने इस स्त्री को चुन करके उससे यीशु मसीह को इस संसार में आने दिया, क्योंकि यह अद्भुत था, ये अद्भुत है कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, उसने यीशु मसीह को अपने कोख में 9 महीने तक रखा। ठीक यीशु मसीह का जन्म उसी प्रकार से संसार में हुआ जैसे और मानव का होता है, लेकिन एक चीज फर्क थी, फर्क ये थी कि उसका कोख में पड़ना परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा था, किसी पुरुष के द्वारा नहीं था। यह परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है, और इसलिए उसका जन्म यूनिक जन्म है, लेकिन परमेश्वर ने उसको कृपा पात्री कहा है, और इसलिए हमें मरियम की आराधना नहीं करनी है, इसलिए मरियम हमारे मध्यस्थ नहीं है। ठीक है, और महिलाओं के समान हम उसका सम्मान करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा वो भी उस कब्र में गई, और दूसरे सलोमी के साथ, दूसरी मरियम के साथ, मरियम मगदलीनी के साथ गई, कई बहनें थी ये जाकर के वहां पर उस कब्र में गई, उन्होंने यीशु मसीह को जी उठे देखा, सब कुछ करा। परंतु बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, अभी पिछले दिनों में एक भाई मेरे पास आया, कह रहे अंकल अभी हम किसी की डेथ हो गई थी और उस डेथ में फ्यूनरल में वहां गए और वहां पर फाइनल, और तब वो वहां पर प्रार्थना करते माता मरियम तू इसको ये कर देना, तो माता मरियम तू इसको ये कर देना, माता मरियम तू, तो वो मरियम के द्वारा सब कुछ करते। तो मैंने उस भाई को समझाया ये बाइबल के अनुसार नहीं है, हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है, हमारा मध्यस्थ प्रभु, और इसलिए इस बात को समझना है कि मरियम एक स्त्री मेरे और आपके समान परमेश्वर ने विशेष अभिप्राय से चुना अपनी योजना को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसने जो कथन कहा था उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 15 पद में स्त्री के वश से उसको अपने कथन को पूरा करना था। पहली बात, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता है, परमेश्वर अपने वचन से मुड़ता नहीं है। दूसरी बात, एक भविष्यवाणी थी जिस भविष्यवाणी को पूरा होना था। तीसरी बात, परमेश्वर की एक सनातन की योजना थी कि इस निष्पाप व्यक्ति को इस संसार में आना था ताकि वो पाप में व्यक्तियों का छुटकारा कर सके। एक निष्पाप पुरुष पाप में पुरुषों का और जीवनों का छुटकारा कर सके, ये योजना थी परमेश्वर की। और जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्व बात है इस स्थल को समझना, और ये हमारे विश्वास का आधार होता है। हम कुछ कुछ बातों को और भी आगे देखना चाहेंगे तब उसके बाद, लेकिन जब यहां पर लिखा हुआ है कि मरियम घबरा गई कथन को सुनकर, 29 पद में इस कथन को सुनकर वो अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई। दो बातें, दो शब्द हैं, घबराना और सोच में पड़ना। वो घबरा गई और सोच में पड़ गई, क्यों वो इस बात को सुनकर घबरा गई, क्या सोचने लगी? पहली चीज तो उसके सामने एक संदेश, ऐसा संदेश था जो उसके लिए अचानक से था और बहुत मुश्किल था एकदम से विश्वास करना। घबराहट का उसका कारण यह है, यद्यपि परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अरे मेरी तो मंगनी हुई है, जिससे मेरा विवाह होने वाला है वो तो दूर है, लेकिन अब समाज में क्या बात पहुंचेगी, अगर कल मैं घर धारण करूंगी, लोग मुझे देखेंगे, लोग जानेंगे, तो क्या करेंगे? वो तो उस व्यवस्था के अनुसार मुझे सड़क पर ले जाएंगे और मेरे को पथराव करके मार डालेंगे। क्यों? वो मुझे कुछ और समझेंगे, वो मुझे समझेंगे कि मेरी मांगनी हो गई लेकिन मैं किसी और पुरुष के साथ मेरा संबंध हुआ है, और इसलिए मैं संसार की दृष्टि में अगर मैं व्यभिचारी कहलाई जाऊंगी, तो व्यभिचारी की ये था, ये सजा थी कि उसको पथराव करके मार डाला जाए। और आप जानते हैं यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में एक स्त्री को कुछ लोग पकड़ कर लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बता इसने ऐसे करा है, इसको व्यवस्था के अनुसार क्या सजा देनी चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे, और परमेश्वर उस स्त्री को क्षमा करते हैं। लेकिन मरियम के लिए सोचना का स्वाभाविक था, क्योंकि वो सारी बातों को इतना नहीं समझती थी, और इसलिए घबराहट उसके अंदर है, चिंता उसके अंदर है, सोच के अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब स्वर्गदूत उससे कुछ बातों का कहता है, तब वो कहता है इस कदम सुनकर घबरा गई कि किस प्रकार का अभिवादन है, ये कैसा है, ये स्वर्गदूत आया है, ये संदेश लेकर आया है, मुझसे बात कर रहा है, इसको भेजा गया है, अब ये मुझे बता रहा है ये क्या होगा। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम भयभीत ना हो। सबसे पहली बात, स्वर्गदूत मरियम को ढाढ़स दिला रहा है, स्वर्गदूत मरियम के विश्वास को बढ़ा रहा है, स्वर्गदूत उस संदेश के द्वारा मरियम को तैयार कर रहा है, उसके मस्तिष्क को तैयार कर रहा है, उसके हृदय को तैयार कर रहा है, उसके मन को तैयार कर रहा है, अर्थात उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न कर रहा है। मेरे प्रिय, मैं बार 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 दोहराता हूं और दोहराता रहूंगा, हम परमेश्वर के संदेश को, हम परमेश्वर की वाणी को अपने कानों से सुनते हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जब हम कानों से सुनते हैं तो उसकी दूसरा कदम यह प्रतिक्रिया होती है कि हम फिर बुद्धि से उसको समझते हैं, मस्तिष्क को समझते हैं, विश्वास में चीजें पाई जाती हैं, विश्वास में हम सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं और उसका अंगीकार करते हैं, विश्वास है। अब इसके अंदर यही कार्य हो रहा है, वही कार्य इसके अंदर हो रहा है। अब वो कह रहा है कि वो तब स्वर्गदूत ने कहा, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू अपने जीवन को ना, परमेश्वर ने तुझ पर कृपा की है, परमेश्वर ने तुझ पर अनुग्रह किया है। यह कारण था मरियम को चुने जाने का, परमेश्वर ने उस पर कृपा की है, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया है। और मेरे प्रियो, ये कृपा और अनुग्रह आरंभ से हम देखते हैं परमेश्वर का साथ साथ चला हुआ है। अदन की वाटिका में जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर दुखी हुआ, परमेश्वर क्रोधित हुआ, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, उसने मनुष्य को अधन की वाटिका से निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसकी कृपा, उसकी अनुग्रह, उसका अनुग्रह उस समय भी हम देखते हैं जब उसने उसके नंगेपन को वस्त्र पहना के ढक दिया। ये उसका मनुष्य के लिए कृपा थी और उसका अनुग्रह था, और बार बार हम इस बात को देखते चले आ रहे हैं। और आज भी अगर मनुष्य के जीवन का जो छुटकारा है, या परमेश्वर की योजना अगर किसी जीवन में पूरी होनी है, चाहे वो मेरा जीवन हो, चाहे वो आपका जीवन हो, तो परमेश्वर की कृपा है उसमें होनी है और परमेश्वर का अनुग्रह। बिना परमेश्वर की कृपा और बिना परमेश्वर के अनुग्रह से हम परमेश्वर से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते, हम पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं कर सकते, हम उसकी योजना में सम्मिलित नहीं हो सकते। पहल परमेश्वर का है और परमेश्वर ने पहल करी है। सो यहां पर उसने इस नारी को चुना है और कह रहा है, तब उसके बाद वो कहता है, जो अभी हमने यशा उसके 9वें अध्याय को पढ़ा है, यशा 9वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, पहले पद से आगे पढ़ेंगे, कल कई बार हम केवल 6 और 7 को पढ़ते हैं, लेकिन पहले पद से पढ़कर उस पर विचार करना बहुत अच्छा है। कैसी स्थिति लोगों की थी, लेकिन किस प्रकार से परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं करते 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 तब यीशु के जन्म के बारे में बात करता है। ओ, एक जिसका जन्म होगा वो कैसा होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, प्राकृत परमेश्वर होगा, उन सारी चीजों को वर्णन करता है। और यहां पर वही चीज को दूसरे रूप में हम देखते हैं, क्या कह रहा वो, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। सबसे पहले यह निर्देश है, यह आदेश है, परमेश्वर ने उसको प्रोत्साहन दिया है, परमेश्वर ने उसको आशा दिलाई है, परमेश्वर ने उसको निश्चय दिलाया है, परमेश्वर ने उसके भय के जीवन को, डर के जीवन को, चिंता के जीवन को दूर करने के लिए उसको साहस दिया है। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है तुझे एक काम ये करना होगा, ठीक है, जो पुत्र जन्मेगा उसका नाम यहोशू रखना, यीशु यहोशू है, जोशुआ, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है, उद्धार करता। जो हम पुराने नियम में जोशुआ की पुस्तक को देखते हैं तो उसी नाम से निकल कर आया है, छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, छुड़ाने वाला है, वो यीशु होगा और वो लोगों से छुटकारा देगा, ये उसका नाम का अर्थ है। कहता है तब उसके बाद वो कहता है ना केवल यीशु उसका नाम रखना, क्यों, वो पहली बात वो महान होगा। परमेश्वर की महानता, प्रभु यीशु मसीह की महानता कैसे बड़ी है, आइए मेरे साथ निकालिए फिलिप्पियों के दूसरे अध्याय में, मैं 7 पद से पढ़ रहा हूं। उसने अपने आप को, यीशु मसीह ने, पौलुस लिख रहा है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह नीचे 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 आया है, उन स्टेप्स को देखे, उन कदमों को देखे। फिलिप्पियों 2:7 पद से पढ़ रहा हूं मैं। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया, मनुष्य के समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रही मृत्यु, यहां क्रूस की मृत्यु शैली। यह सबसे नीचे था, ऊपर से नीचे। लेकिन अब उसकी महानता को देखिए, क्योंकि उसने यह किया इसलिए परमेश्वर ने उसको महान किया। अब उसकी महानता को आगे देखिए क्या हुआ, 9वें पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, क्योंकि शून्य हुआ, आज्ञाकारी रहा, सब कुछ हुआ, परमेश्वर ने उसको अति महान किया। और यह योजना परमेश्वर की आरंभ स्थिति, उसने मरियम से कहा वो महान होगा, और हम उसकी मानता करते थे किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको महान होने दिया, किस प्रकार से वो महान बनाया गया। लिखा है वो महान होगा और वो नाम, उसको वो नाम प्रदान किया जाएगा जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना झुके। वो नाम कौन, नाम यीशु नाम, कि यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना झुके, चाहे वो स्वर्ग में हो और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, और परमेश्वर पिता की महिमा से प्रत्येक जीव अंगीकार कर ले यीशु मसीह प्रभु है। ये मानता है, परमेश्वर उसको महान किया। और पौलुस उस महान होने का भेद को यहां पर फिलिप्पियों के दूसरे अध्याय में उसको व्यक्त करता है, वर्णन करता है। और तब हम देखते हैं कि वो ना केवल महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रधान, परम प्रधान परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर, उसका पुत्र कहलाएगा। और 3 बार हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस गवाही को देखते हैं, जब लोगों, जब प्रभु परमेश्वर पिता ने स्वयं कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इससे मैं प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और बाद में लोगों ने भी उसको स्वीकार किया। जब हम यशायाह उसके 9 अध्याय को पढ़ते हैं तो 9 अध्याय में जो कुछ लिखा हुआ है प्रभु के बारे में, कि परमेश्वर किस रीति कार्य करेगा और वो अद्भुत करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार होगा, उसकी शांति कभी ना, आनंद का राज होगा, उसके राज का अंत कभी ना होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, वही चीजों को यहां पर हम देख रहे हैं। अब स्वर्गदूत उसी बात को यहां पर मरियम को और स्पष्टता के साथ कह रहा है, जो जन्म लेने वाला है यीशु मसीह के बारे में। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की एक अद्भुत सनातन योजना के द्वारा तहत हुआ है, और इसलिए कह रहा है परम प्रधान का, और ना के लिए प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। अगर भजन संहिता 89 में जाए, नवासी में वहां पर देखें, भजन संहिता 34 में जाए, तो वहां पर इन सारे पदों को हम देखने पाते हैं जो इसे संबंध में है, कि किस प्रकार से वो आनंद काल का सिंहासन उसको, जो दाऊद का सिंहासन है उसको मिलेगा। दूसरे शमूएल में भी है, दूसरे शमूएल उसके साथ रहता है, 16 पद में दाऊद से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी थी कि मैं तेरे सिंहासन का कभी ना अंत नहीं होने दूंगा, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस दाऊद के कुल से ही इस संसार में आने दिया है। मैं उन पदों को इसलिए नहीं निकाल रहा हूं ताकि समय बचाने के लिए, परंतु आगे चलकर हम देखते हैं, तब वो याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज करेगा और उसके राज का अंत ना होगा। मेरे प्रियो, लोग कई बार सोचते हैं कि हम विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे, सतावनी लाएंगे, नए नियम बना देंगे, कानून बना देंगे, और ऐसा करने से मसीहत नहीं आगे बढ़ने पाएगी। उनकी ये बुद्धि, ये जो बुद्धि है वो निर्बुद्धता है, निर्बुद्धता है। परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य को कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि परमेश्वर का कार्य है। इसलिए प्रेरितों में उसके 5 अध्याय में स्पष्ट से है, अगर मनुष्य का कार्य है तो समाप्त हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का कार्य है तो उसको कोई रोकने नहीं पाएगा। और यह परमेश्वर का राज, प्रेरितों को उसका 5 अध्याय उसके 38 पद में पढ़ेंगे आप, तो यह पद मिलेगा आपको 38-39 पद में। लेकिन अगर सच में जितना दी, मैं बार बार बोलता हूं, किसी ने कहा, खास से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, उन्होंने कहा कि तुम क्रिश्चियंस को मत परेशान करना, क्रिश्चियन को आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, उन्होंने कहा ये खटमल की औलाद है, क्रिश्चियन जो है खटमल की औलाद है। उन्हें कहा खटमल की एक विशेषता है, अगर खटमल को दबा के आप मारेंगे तो उसके खून से और खटमल उत्पन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इनको सताओगे, इनको मारोगे, तो और 10 मसीह खड़े हो जाएंगे। और सच्चाई है, और जितनी अधिक सतावनी आती है, कठिनाई आती है, अगर आप सतावन में, कठिनाई में, परेशानी में परमेश्वर के नाम से खड़े हो जाते हैं, प्रभु की सामर्थ में खड़े हो जाते हैं, मेरे प्रिय शत्रु परास्त हो जाता है, आपकी साक्षी बढ़ जाती है, और लोग उसके पीछे आपके साथ और खड़े होकर कई लोग प्रभु में आते हैं। हमारे जीवन का यह अनुभव है, कहीं भी सेवा में, कहीं भी जाइए, परिवार में, विश्वास में, या तो आप डर के मारे पीछे हट जाइए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास करिए, हिम्मत रखिए, साइज रखिए, विरोध को सहिए, खड़े हो जाइए, सब एक दिन शांत हो जाएगा और आपको प्रभु बढ़ा देगा। लेकिन विरोध का आना जरूरी है और अच्छा है, आपकी गलतियों के कारण नहीं, आपके पाप के कारण नहीं, आपके स्वभाव, आपके चरित्र के कारण नहीं, लेकिन सुसमाचार के कारण, कि आप सुसमाचार का सम्मान कर रहे हैं, सुसमाचार का आप आदर कर रहे हैं, इस बात के कारण। अगर इस बात के कारण, तो परमेश्वर उस कार्य के द्वारा अपने नाम को ऊंचा करता है। और यहां पर वो कहता है कि उसके राज का कभी अंत ना होगा, और परमेश्वर का धन्यवाद बढ़ता चला जाएगा, जो कुछ भी आज हो रहा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, बाइबल में क्या लिखा है, और अंतिम दिनों में राज राज पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, भूइडोल होंगे, भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन यीशु का सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक फैल जाएगा, जब तक वो अंतिम ना फैले, प्रभु का आना ना होगा। और इन सबके बीच में परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। मैंने शायद पहले ही बताया, 12 बंकी में एक बार हमारी मीटिंग होने वाली थी कैंपस क्रूसेट के साथ, और हमने सब आयोजन करा हुआ था, और कैंपस क्रूसेट के कुछ भाई लोग आने थे, शायद पता नहीं उस समय कमल शर्मा उसमें थे नहीं थे, और उसमें आने वाले थे, और अच्छी सब तैयारी करेगी 300 लोगों, वहीं के एक भाई ने जाके आरएस कुछ लोगों और कुछ पुलिस वालों को उल्टा सीधा बोल दिया, और थोड़ी देर बाद चर्च को पूरा पुलिस ने, पीएसी ने घेर लिया के, और विरोधी लोग भी आ गए, चर्च कैंपस में घुस गए, अंदर आ गए, मीटिंग नहीं होने दी, बहुत सारी इंक्वायरी हुई, कई बार लंबी कहानी है, बहुत कुछ हुआ, लेकिन सच में बताना चाह रहा हूं, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आया, और न्यूज़पेपर में आया, मुझे तो ध्यान ही था, बनारस से एक भाई ने मुझे फोन किया, कहले भाई रॉली, अरे आज जाइन में कल क्या हो गया, मैंने क्यों, आपके लिए जाइन के लिए पेपर में आया हुआ है, मैंने क्या है, तब देखा पेपर में पढ़ा कि एक भाई की उसमें कहां साक्षी निकली हुई है, और उस पेपर में लिखा हुआ था उसका कि ये सारा ये लोग कर रहे थे, और लोगों ने धर्म चेंज बदलने का उन पर दोष लगा गया, लेकिन कुछ नहीं, तब पुलिस ने पूछा ये करा, लोगों ने इंक्वायरी करी, और तब किसी ने बताया कि हम इस कलीसिया में क्यों आते हैं, और एक भाई उसने इस बात की साक्षी दी कि हम बहुत परेशान थे जो कुछ भी था, लेकिन जब से हम इस कलीसिया में आए, हमारे लिए प्रार्थना की गई, प्रभु ने हमें जीवन दिया, प्रभु ने हमें बचाया, और हमारे जीवन में शांति मिली है, आनंद मिला है, और हम इस कलीसिया में आराधना करने के आते हैं। हम कितने लोगों को संदेश दे रहे थे, 300 लोगों को, पेपर ने कितने लोगों को संदेश दे दिया, 1000 लोगों को दे दिया। हमारी योजना तो केवल छोटी थी, लेकिन उस सतावनी के बीच में, उस विरोध के बीच में काम, हम मीटिंग नहीं कर पाए, उन्होंने नहीं होने दी, कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में जो साक्षी उन लोगों ने लिख के दी, और उसमें SDM की सहमति प्रकट की गई, वो उससे बड़ी साक्षी बन गए। सो हमारी योजना अजीब और परमेश्वर की योजना अलग है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, उसके कार्य को कोई नहीं रोकने पाएगा, उसकी प्रभु सत्ता दिन पर दिन बढ़ती 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 चली जाएगी। इससे बड़ा याब मेरे और आपके लिए कुछ और बात में नहीं है, और इसलिए मुझे और आपको हिम्मत रखनी है, साहस रखनी है। बड़े दिन का संदेश केवल यह नहीं कि यीशु मसीह ने जन्म लिया, लेकिन बड़े दिन का संदेश है उसने मेरे और आपके जीवन में एक बड़ा काम किया है, जिस कार्य को हम दुनिया के सामने पहुंचा सके। यीशु एकमात्र उद्धार करता है, यीशु ही जीवित प्रभु है, यीशु सच्चा परमेश्वर है, उसने हमारे जीवन को बचाया है। यह बड़े दिन का संदेश है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में उसकी कहा लिखा हुआ है, यह ऐसा होगा और वो कह रहा है कि उसके राज का अंत ना होगा। 34 पद में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं। स्वर्गदूत ने उसे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, ये पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर आच्छादित या छाया करेगी, घेर लेगी, डेरा करेगी और ये सब कुछ होगा। इस कारण वो पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम, ये तेरे कारण नहीं है, तेरी विशेषता के कारण नहीं है, तेरी धार्मिकता के कारण नहीं है, तेरे दीनता और नम्रता के स्वभाव के कारण नहीं है, ये इसके कारण नहीं है, ये परमेश्वर के कारण है। परमेश्वर इस कार्य को करने जा रहा है, परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने जा रहा है और परमेश्वर को इस संसार में अपने पुत्र को भेजने के लिए किसी ना किसी नारी को चुनना था और उस लिए परमेश्वर की दृष्टि उस मरियम पर करी गई और उसने उसको चुन लिया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह 30 साल अपने माता पिता की अधीनता में रहा और 30 साल के बाद जब उसने सेवा शुरू करी, तो सबसे पहले सेवा में हम सबसे पहले आश्चर्यकर्म को यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं और काना के विवाह में। अगर ऐसे ही होता कि मरियम प्रभु यीशु मसीह से बड़ी होती और जब मरियम इसके पास आई थी कि देख यहां तो लोग मेहमान लोग आए हैं और दाखरस खत्म हो गया और यीशु से कहते हैं देख दाखरस खत्म हो गया और कुछ इनका इंतजाम कर, ये लोग परेशान हो रहे हैं। मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे नारी मेरा समय अभी नहीं आया। वहां पर उसने मां शब्द इस्तेमाल कर नहीं करा, मां शब्द देखा, हे नारी मेरा सब अभी समय नहीं आया। उसने अपनी मां को जरूर सम्मान करता था, सब कुछ था, लेकिन उसने संबोधन के साथ क्या उत्तर दिया इस बात पर विचार करिए। फिर मैं कह रहा हूं पर परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे जीवन के लिए। दूसरी ओर हम मरियम के जीवन की प्रशंसा करते हैं, उसकी धार्मिकता के लिए, उसकी नम्रता के लिए, उसके स्वभाव के लिए, जो अभी हम आगे चल के कुछ बातों में देखेंगे इन सब कुछ का। और ये हमारी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि किस रीति से यदि हम अपने जीवनों को परमेश्वर की योजना में सम्मिलित करना चाहते हैं तो किस स्वभाव को, किस जीवन को, किस मनसा को, किस चरित्र को इन बहनों के जीवन में होना है जिससे परमेश्वर अपनी योजना में आपको इस्तेमाल कर सके। और आप नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे आपको अपनी योजना में इस्तेमाल करता है। हो सकता किसी बड़े काम के लिए, लेकिन हो सकता किसी एक आत्मा को बचाने के लिए, हो सकता किसी जीवन को संभालने के लिए, हो सकता किसी को याद दिलाने के लिए, हो सकता किसी को हिम्मत दिलाकर खड़ा करने के लिए। लेकिन परमेश्वर की योजना छोटी बड़ी कोई नहीं होती, परमेश्वर की योजना योजना होती है। अतः वो कहता है आगे चल करके, देख तेरे कुटुंब में लिशिबाग से भी एक बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है और ये उसको जो बांझ कहलाती है छठा महीना है। अब ये उसके लिए आशिक, तभी उसके बाद वो लिशिबाग के पास जाती है। लेकिन अब क्या है, 37 पद, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। सबसे पहले ये वचन स्वर्गदूत द्वारा अब्राहम तक पहुंचाए गए थे, उत्पत्ति उसके 18 अध्याय में, उत्पत्ति उसके सबसे पहले वही यही परिस्थिति थी, वहां पे भी यही परिस्थिति थी। उनके लिए आश्चर्य था, अरे हम तो बूढ़ा हो चुके हैं कैसे ये होगा, इलीशी बूढ़ी हो चुकी कैसे होगा, अरे मैं तो कुंवारी हूं कैसे होगा, अरे मैं तो किसी पुरुष को साथ जानती नहीं कैसे होगा, असंभव है। नहीं नहीं नहीं, नहीं असंभव नहीं, मेरे और आपके लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव। और तब वो इलीशिबा के पास उठकर जाती है और जब जाती है लिखा आगे चल के 38 पद में मैं आऊंगा, मरियम ने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं। ये कितना अधिक समर्पण है, कितनी अधिक नम्रता है, कितनी अधिक दीनता है। उसने उस वाणी का विद्रोह नहीं किया। अब उसके ध्यान में ये नहीं, वो चिंता दूर हो गई, वो भय दूर हो गया, अरे मैं कैसे लोगों को मुंह दिखाऊंगी, लोग मुझे क्या करेंगे, शायद मेरा पति घर से निकाल देगा। और यूसुफ ने ऐसा करने का प्रयास किया, मत्ती उसका वर्णन करती है, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को समझाया स्वर्गदूत के द्वारा और तब यूसुफ तैयार हुआ। क्या होगा, मेरी कैसे बदनामी होगी, मैं कैसे दिखाऊंगी, हो सकता है लोग मुझे इस तरह से करें, मेरे पर दंड दें, क्या होगा। लेकिन अब वो सब कुछ नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर की वाणी को सुनना सीख लिया था। मेरे प्रियो, धन्य वो महिलाएं जो शांत होकर के परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार रहती हैं। कितना अधिक आप शांति से परमेश्वर के साथ बैठ करके उसकी वाणी को सुनते हैं, उससे प्रार्थना मांगते हैं, उसके वचन में समय देते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, कितना अधिक, ये ध्यान है। और तब वो क्या कहती है, कहती है मैं तो प्रभु की दासी हूं। क्या ये आपके जीवन की साक्षी है? क्या ये आप कह सकते हैं प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे चुनकर मेरे पर ध्यान दे करके मुझे बचाया और मुझे आपने अपनी दासी बनाया है। इससे बड़ा टाइटल और कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा टाइटल और कुछ नहीं हो सकता। हम प्रभु के दास और दासी हैं। काश मेरे और आपके जीवन में हो, ये हो। और तब आगे कहती है तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, अब मैं विद्रोह नहीं करूंगी। अगर तूने ये कहा है और ये अद्भुत है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समझ से परे है, मेरी इच्छा से परे है, मेरी शक्ति से परे है, सामाजिक रीति से असंभव है, कठिन है, लेकिन अगर तेरा वचन है तो मैं अपने आप को तेरे वचन के हाथों में सौंप देती हूं, मैं सरेंडर कर रही हूं तेरे वचन के अनुसार हो। कितनी बार हम अपने जीवनों को परमेश्वर के वचन के अधीनता में डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो अपने आप को सरेंडर कर रही है, और ना केवल ये, लेकिन आगे चल करके जब वो उसके पास जाती है, एलीशिबा के पास जाती है, जैसे मैंने कहा, जैसे उसने एलीशिबा के बारे में सुना, ओ एलीशिबा के साथ ऐसा हो रहा है, वो तुरंत एलीशिबा के पास गई। स्वर्गदूत जाता है, उठती है, उठ करके उन्हीं दिनों मरियम उठकर शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश में यहूदा नगर में गई और वहां जकरिया के घर में प्रवेश करके एलीशिबा के पास आई। और तब 45 पद में, धन्य है वो स्त्री जिसने विश्वास किया और जो कुछ प्रभु ने उससे कहा वो पूरा होगा। अब यहां पर एलीशिबा मरियम के लिए कह रही है, धन्य वो स्त्री उसने विश्वास किया। परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आप को समर्पित किया, परमेश्वर के वचन को सुन करके उसने विश्वास किया। मेरा और आपका विश्वास कैसा विश्वास है? किन बातों पर हम विश्वास करने तैयार होते हैं? परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, कोई कार्य असंभव नहीं है। कितना अधिक हमारा जीवन उस पर निर्भर रहता है। और यहां पर हम इस बात को देखते हैं जो मरियम के जीवन में हम पाते हैं। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं। उसने उसे पूछा, उसने परमेश्वर की बात को, भेद को जाना और उसने उस पर विश्वास किया। जो उसका संदेह था, जो उसका भय था, वो दूर हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार थी। और तब हम आगे चलकर देखते हैं इस कारण किस कारण उसके अंदर भय दूर हो गया, उसके अंदर शंका दूर हो गई, उसके अंदर डर दूर हो गया। अब वो विश्वास करने लगी, परमेश्वर के वचन को मान लिया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। अब उसके कारण क्या हो गया, मैं आगे बढ़ने से कहना चाहूंगा। कितने समय से आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? बार बार संडे को आते हैं, तब क्यों हम विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुन करके आज्ञा पालन करने कदम नहीं उठाने पाते? प्रभु के पीछे चलना है या संसार के पीछे चलना है? मैं अक्सर बोलता हूं, क्षमा कीजिएगा, एक बार एक गधा था, मैं भी गधा हूं, हम सब गधे हैं, एक गधा था और जब जा रहा था उसने आंख उठाई तो देखा एक बहुत बड़ा थाल है और उस थाल में खूब रंग बिरंगा, खूब बढ़िया खाना रखा हुआ है। अब देखा भाई भूखा तो था, अरे बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा नीचे कर गर्दन उठा गई हूं करके, जैसे गर्दन नंद कर, अरे दूसरा थाल दिखाई दिया, वो बोस में भी बहुत रंग बिरंगा था, थोड़ा नाक तो बहुत अच्छी सूंघ दिया। अब दो थाल उसको दिखाई दे रहे, एक देखने में बहुत अच्छा है, रंग बिरंगा है, दूसरा खुशबूदार है, पौष्टिक रख रहा है, बहुत कुछ उसमें दिख रहा है। खुद सोचने लगा इसको खाऊं। दोनों को बारी बारी देखता रहा, ऐसे ही करता रहा, भूखा मर गया। कितने बार हमारा जीवन भी ऐसे होता है, हम निर्णय ले नहीं पाते और अधर में लटके रहते हैं और वैसे नाश हो जाते हैं। सावधान रहिए। और इसलिए जो निर्णय लेना है, अगर आपने वचन सुना है, सुन रहा है, क्यों नहीं वो विश्वास जो सिस्त्री के अंदर मरियम के अंदर आ गया, क्यों नहीं वो विश्वास मेरे और आपके अंदर उत्पन्न होता है? क्यों नहीं हम उस बात को सुनकर के खड़े होने के तैयार होते हैं? अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई भी कुछ कहेगा मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मुझे मारने के लिए तैयार होंगे मैं वो भी करने तैयार हूं। अब मैंने जान लिया ओ उद्धार करता परमेश्वर ने मेरे पर दृष्टि की है और परम प्रधान ने दृष्टि की है और मेरी कोख को वो इतने बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि उद्धार करता मेरी कोख से जन्म लेगा। कितनी अद्भुत बात है, मेरी समझ के परे है। मैं तो कल को नहीं देखती जानती, मैं कल के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं उसको देख रही हूं, उसको जानियो जो मेरे कल को अपने नियंत्रण में रखता है और जो मेरे से इतनी बड़ी बड़ी बातें अद्भुत बात कर, मैं उस पर विश्वास करती हूं। क्योंकि परमेश्वर ना तो कभी झूठ बोलता, ना कभी धोखा देता, ना कभी छल करता है, ऐसा परमेश्वर। और ऐसे परमेश्वर की वाणी को मैं और आप हमेशा सुनते हैं, इसलिए मेरे और आपको निर्णय लेने के तैयार होना है। हिम्मत मत हारिए, डरिए मत। और अंतिम बात में क्या कहे, तब वो क्या कहती है 40-46 पद में, मैंने कहा केवल हम मरियम के स्थल तक ही रहेंगे यीशु के जन्म के बारे में। दूसरे भाग में योना का जन्म होता है, अगली बार फिर हम कुछ और देखेंगे। तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित है क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से लेकर युगानुयुग तक की पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। मेरे लिए बड़े काम किए हैं, मरियम कह रही है। उसके द्वारा बड़े काम किए हैं या उसके लिए बड़े काम किए हैं? उसके लिए बड़े काम किए हैं क्योंकि उसको परमेश्वर ने चुन लिया है, परमेश्वर ने उसको अपने महिमा के लिए अपने कार्य के लिए उपयोग किया है और उसके द्वारा वो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को, ऐसे जन को इस संसार में ला रहा है जिसके लिए, जिसके द्वारा मनुष्य सारे जगत का छुटकारा वो बन जाएगा और मनुष्य उस पर विश्वास करके उससे उद्धार प्राप्त करेंगे। अभी तक क्या स्थिति थी? मनुष्य पाप में मरा था, इसीलिए जब यशायाह में हम देखते हैं, यशायाह जिसको हमने पढ़ा था, यशायाह उसके 9 अध्याय को, तो कहता है पहले पद में जब वेदना में थी उसके अंधकार बनाना रहेगा, पूर्व काल में उसके बबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया परंतु बाद के दिनों के वो समुद्र के तीर यर्दन उस पार गैरियोदी के लील के महिमा होगा। अंधकार में चलने वालों ने महान ज्योति देखी, अंधकारपूर्ण देश में रहने वालों ने पर प्रकाश चमका। ओ क्या हो रहा था, लोग जो अंधकार में थे उनके लिए ज्योति आ गई। और मेरे प्रियो ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार है। पाप ने मुझे और आपको अंधकार में धकेल दिया था, पाप ने मुझे और आपको अंधकार में धकेल दिया था, ज्योति हमसे दूर हो चुकी थी, हमारा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ अंधकार में था और ना कल अंधकार में था, लेकिन उसी अंधकार में चलते चलते एक दिन हमारी आशा जो है अनंत अंधकार के लिए ठहरा दी गई थी कि जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की उस योजना के लिए, परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए, परमेश्वर की उस दया के लिए जिसने अपनी योजना में होकर के उस स्त्री को चुन लिया और उसके कोख से मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आ गया और ना कल इस पृथ्वी पर आ गया, ना कल उसने आश्रम किया, ना कल उसने शिक्षा दी, लेकिन मेरे और आपके पाप को लेकर के वो क्रूस पर बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। असंभव था कि मृत्यु उसको अपने अधिकार में रखती क्योंकि मृत्यु पर उसने विजय प्राप्त की थी और उसने उस विजय प्राप्त करने के कारण उस अंधकार को दूर कर दिया। और तब उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा अनंत जीवन पाएगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो फिर अंधकार में कभी ना रहेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, अनंत ज्योति पाएगा। मेरे प्रियो बड़ा दिन अंधकार को दूर करने के लिए, ज्योति प्रदान करने के लिए आया, पाप से छुटकारा देने के लिए और अनंत जीवन प्रदान करने के लिए आया। बड़ा दिन का संदेश, यीशु मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गया। मरियम ने उसको पहचान लिया और इसलिए उसने उस पर विश्वास किया। क्या आपने उसको पहचाना है? क्या आपने उसको पहचाना है? क्या आपने उस पर विश्वास किया है? या आप अभी भी किसी संघर्ष में हैं, अभी भी सोच में हैं, अभी भी विचार में हैं, अभी भी सोच रहे हैं कुछ और देख लें, कुछ और देख लें, कुछ और कर लें, प्रभु ऐसा कर दे प्रभु, या नहीं प्रभु जी मैं जान गई हूं, मैं जान गया हूं, तो ही अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और सबसे बड़ा अद्भुत काम यह है, सबसे बड़ा अद्भुत काम यह है कि मेरे पापों को छुटकारा देने के लिए कोई और योजना पूरी नहीं हो सकती थी, प्रभु यीशु मसीह पूरी हुई। कुछ और नहीं था, कुछ और नहीं था, न धर्म न कर्म न व्यवस्था न रीति विधियां न तरीके न कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना। और परमेश्वर की योजना वो परमेश्वर का न केवल प्रभु यीशु मसीह में जन्म लेना लेकिन उसका बलिदान होना। क्या इस बड़े दिन में आप नई रीति से अपने जीवन के बारे में सोचेंगे? क्या नई रीति से आप आगे बढ़ेंगे और प्रभु पर विश्वास करते हुए उसके जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे? और वो कार्य जो वो आपके जीवन में करेगा तो उसकी प्रभुता आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। प्रभुता केवल संसार में नहीं बढ़ती है, लेकिन जब प्रभु हमारे हृदय में जन्म लेता है तो उसकी प्रभुता हमारे हृदय में हमारे जीवन बढ़ती चली जाती है। वचन बढ़ता फैलता फैलता चला जाता है। कई बार वचन आता है लेकिन हम उसको दबाए रखते हैं, लेकिन जब उसको आजादी देते हैं तो वो फलवंत होता है, तो हमारा जीवन भी फलवंत होता है और परमेश्वर को महिमा मिलती है। काश परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें।